اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، ولاہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صلوات پڑھے محمد. عزادارہ امام رضوی کالج بامبے کی ففتھ مجلس ہے، پانچویں مجلس ہے، ہولی پلیسز پہ ہو رہی، جو اسلام کی ہولی پلیسز، وہ اسلام جو اللہ کا فیوریٹ ریلیجن ہے، پسندیدہ مذہب ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا جو سب سے پسندیدہ ریلیجن، فیوریٹ ریلیجن، اونلی ریلیجن از اسلام. اس اسلام کی جو ہولی پلیسز ہیں اس پہ یہ مجالس ہو رہی، اس کی ہسٹری کے اوپر. میں نے مکہ کمپلیٹ کیا، مدینے میں انٹر ہوئے، کل مدینے کے بارے میں بتایا، آج میں تیزی سے مدینے کو کمپلیٹ کر کے نجف اشرف میں جاؤں گا انشاءاللہ، اس لیے کہ نجف اشرف ہماری ہولیسٹ پلیس یو کین سے، ویسے ہر وہ سٹی کہ جہاں امام دفن ہے، جیسے نجف اشرف پڑھنا ہے، کربلا ہے، کاظمین ہے، سامرہ، عراق کی وہ ہولی پلیسز، اور میں انشاءاللہ مدائن کو بھی کور کروں گا. مدائن میں جناب سلمان فارسی ہے اور جابر ابن عبداللہ انصاری صحابی رسول ماں پہ دفن ہے. آج کل مدائن عام طور پہ نہیں جاتے، پہلے سب جاتے تھے مدائن، لیکن اس زمانے میں جب اسلام تھا، اللہ کے رسول کا زمانہ تھا، تو مدائن ایران میں تھا، ایران کا ایک پارٹ تھا وہ، لیکن اب وہ عراق ہی کا ایک پارٹ ہے، بغداد سے قریب ہے. میں کچھ مومنین بامبے سے گئے اور انہوں نے جا کے زیارت کی، بہت بڑی زیارت ہے. سب سے آپ سوچو کہ سلمان دفن ہے، جابر ابن عبداللہ انصاری اور بھی رسول کے صحابی ہیں وہاں پہ، میں اس کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاؤں گا، تو انشاءاللہ مدائن کے بارے میں بھی بولوں گا. نہ اس لیے میں نجف اشرف میں جلدی انٹر ہو جانا چاہ رہا، اب ہر آدمی چاہتا کہ امام علی کے پاس جلدی جائیں، نہیں دل کی ہماری خواہش کہ مولا کے پاس چل جائے، اس لیے کہ مولا سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں. مولا کے پاس اگر چلے جائے تو وہ ایسا لگتا ہے کہ اپنے گھر میں آ گئے، جنت ہے. تو مولا کے روزے کے اطراف جو پرسنالٹیز ہیں ان کا ذکر کرنا ہے مجھے، امام علی کے ساتھ. اور نجف اشرف کب سے ہے، یہ سٹی کب سے ہے، اور امام علی کے جو گریو ہے وہ کب سے ہے، کیا کیا ہے وہاں پہ. بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، وہ دو دن یا تین دن تو نجف اشرف ہی میں چلے گا، پھر اسی نجف اشرف میں ایک اور فیوریٹ جگہ ہے جس کو وادی السلام کہتے ہیں، میں وادی السلام کے بارے میں بھی بولوں گا. وہاں پہ دو نبی بھی دفن ہیں اور وہ ہماری ڈیسٹینی ہے، وادی السلام تقدیر بھی ہے، جگہ بھی ہے، ڈیسٹینیشن بھی ہمارا وہی ہے، ہماری ڈیسٹینی بھی وہی ہے، بالکل مولا کے روزے سے لگا ہوا ہے. تو انشاءاللہ تو نجف اشرف میں انشاءاللہ مدینہ جلدی فنش کر کے، دعا کر رہا کہ آج مدینے سے میں نکلوں باہر اور نجف اشرف پہنچ جائے. ایک صلوات پڑھ لے محمد بال. یہ ہولی پلیسز اس لیے لی گئے کہ ہمارے پاس تھوڑی اویئرنیس آنا، ہمارے کو تھوڑی انفارمیشن رہنا، کہ جس کو تم مانتے ہو اس کے بارے میں جاننا تو چاہیے نا. اگر ہمارے پاس کوئی نالج ہی نہیں ہے تو پھر تو یہ بہت بڑا افسوس کہ اگر ہم کو مکے کے بارے میں نہیں معلوم. تھوڑا تو بریف کیا میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن اس کے باوجود صرف مکہ پانچ دن تک چل سکتا، مدینہ صرف پانچ دن تک چل، اس لیے کہ مدینہ ایک سٹی ایسی ہے کہ پہلی ہجری سے اپروکسیمیٹلی 230 ہجری یا 240 ہجری تک، نہیں 240 نہیں 250 اور 245 ہجری تک مدینہ آباد تھا. پورے معصومین نے اللہ کا رسول، بی بی، امام علی سے لے کے دسویں امام تک، ہر امام یا مکے میں پیدا ہوا یا مدینے میں پیدا ہوا، مطلب سعودی عربیہ کے اسی اس میں وہیں پہ پیدا ہوئے. उनकी बर्थ वहीं हुई। सिर्फ एक इमाम हमारा ऐसा है कि जो सामेरे में हुआ। 11 इमाम तक मदीना मक्का यही वो बर्थ प्लेस है मासूमीन की। मक्के में सिर्फ 3 हुए, अल्लाह का रसूल, मौला अली और बीबी जहरा सलाम अल्लाह, बस। बाकी पूरे मदीने में। और मदीना एक ऐसी सिटी है कि जहां पे 14 मासूमीन रहे हैं, जहां पर उसके बाद जन्नतुल बकी है मदीने में। जन्नतुल बकी ये वो सेमेट्री है, ये वो ग्रेवयार्ड है कि जहां पर पूरा फैमिली ऑफ प्रॉफिट, पूरे इमामों का खानदान, करबला की सारी बीबियां जन्नतुल बकी में, इमाम चौथे इमाम की पूरी औलाद वहीं पर है, उनकी पूरी अजवा चौथे इमाम से लेके, चौथे इमाम से लेके 10वें इमाम तक, उनकी पूरी फैमिली, इमाम हसन की पूरी फैमिली, इमाम हुसैन की पूरी फैमिली, सारे लोग जन्नतुल बकी में। तब जन्नतुल बकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक सेमेट्री, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि पूरा खानदान, आप सोचो 240 या 45 ईयर्स तक जितनी फैमिली ऑफ प्रॉफिट थी, पूरी फैमिली जन्नतुल बकी में, सिवाय इमाम हुसैन के मासूमीन दूसरी जगह चले गए, लेकिन उनकी फैमिली तो वहीं है, उनकी वाइफ्स वहीं हैं, उनके सिवाय 11वें इमाम के, 11वें इमाम सामेरे में, उनकी वाइफ सामेरे में, बीबी नरजिस खातून सामेरे में है, और 10वें इमाम की जो रियल ओन सिस्टर थी, जो 9th इमाम की डॉटर थी, बीबी हकीमा खातून, वो भी सामेरे में। इनके अलावा पूरा खानदान, मैक्सिमम बोल सकता मैं 95% फैमिली ऑफ प्रॉफिट पूरी जन्नतुल बकी में। हम क्या करते हैं, जब मैं जन्नतुल बकी में एंटर होंगे तो आपको बताऊंगा कि जन्नतुल बकी में कैसा एंटर होना, कैसी कौन कौन लोग हैं, कैसी, आप सोचो इतने मासूमीन अगर वहाँ दफन है, 4 तो इमाम है, बीबी जहरा है, बीबी उम्मुल बनीन है, अजवाज रसूल है, अल्लाह के रसूल के दोनों बेटे हैं इब्राहिम और कासिम, दोनों वही हैं जिसे आप अबुल कासिम कह रहे हैं, जनाब मारिया मदीने में, 8वें इमाम की वाइफ मदीने में, हर सारे मस्जिद मदीने में। तो मदीना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जगह है। लेकिन आज आप जानते हैं कि हुकूमत दुश्मन की है, तो उन्होंने कुछ नहीं रखा। बहरहाल मदीने में हम जाते हैं वहाँ पे सिर्फ मस्जिद नबवी में। मस्जिद नबवी क्या है, ये मस्जिद नबवी इस्लाम की सेकेंड मॉस्क है। पहली मॉस्क कौन सी है, मस्जिद खुबा, जो मैंने कल उसके बारे में बता दिया कि 2 रकत नमाज पढ़ने का रिमाइंड कर रहा हूँ अपने आप को रिलेट करने के लिए कि वहाँ 2 रकत नमाज, जब भी मदीना जाओ तो ये नियत करो कि मैं मस्जिद खुबा बार बार जाऊँगा, इसलिए कि ये भी सुन्नत रसूल है। अल्लाह का रसूल वॉक करके, रिवायतों में कि पैदल जाते थे, वॉक करके, कभी घोड़े पे गए, ऊंट पे गए, जैसा भी गए, लेकिन किताबों में वॉक भी लिखा हुआ है कि आप वॉक करके जाते थे और वहाँ जाके 2 रकत नमाज पढ़ते थे, इन्हें अपनी मस्जिद छोड़ के वहाँ जाके नमाज पढ़ते थे। क्यों, एक हज और एक उमरा। हमारे उलमा ये लिखते हैं, मैं तेज इसलिए पढ़ रहा कि इतनी चीजों को कवर करना है, हमारे उलमा ये लिखते हैं कि हज और उमरा जो है वो हमारा हज उमरा नहीं, मिसाल के तौर पर मैं हज कर रहा या मैं उमरा करता हूं, मेरा उमरा क्या है, मेरे उमरे की वैल्यू क्या है, वो कबूल कर ले तो बड़ी बात है। उमरा और हज मकबूला का मतलब तुम मासूम के साथ कोई हज करे, कितना सवाब है कोई मासूम के साथ। मिसाल के तौर पर मैं इमाम अली के साथ हज कर रहा, इमाम अली के साथ उमरा कर रहा, तो 100% मेरा उमरा कबूल है, मैं मौला के साथ हूँ। तो हज मकबूला, जब भी लफ्ज मकबूला आया तो इसका मतलब है कि तुमने हज या उमरा मासूम के साथ किया, तो वो सवाब है मस्जिद खुबा में जाकर 2 रकअत नमाज पढ़ने का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सवाब। तो जब भी इंशाल्लाह आपको उमरा जल्द से जल्द नसीब हो, तो हम एक दफा तो सभी जाते, एक दफा मत जाओ, अगर आप जोहर की नमाज मस्जिद नबवी में पढ़े तो बीच में, बिटवीन जोहर एंड मगरिब, मैं ये नहीं बोलता कि मस्जिद नबवी में जाके नमाज पढ़ो, लेकिन दोनों के बीच में जो टाइम है ना, इंस्टेड ऑफ सिटिंग एंड जो गॉसिप हम करते हैं, जो बातचीत करते हैं, जो ये सब चीज़ें करते हैं ना, उससे बेहतर आप जाओ और मस्जिद खुबा में पढ़ो। एक बात और ये बोल रहा, जितनी आप होली सिटीज को जाते, मैंने मदीना गए या मक्का गए, हम मदीना मक्का जा रहे एक 2 घंटे के लिए हरम जा रहे हैं या करबला जा रहे हैं, नजफ शरीफ जा रहे हैं, क्या करते, 2 घंटे के लिए हरम गए, वापस आ गए, होटल आ गए, होटल आके फिर मैं ये नहीं बता, सब एक जनरल बात कर रहा, आए बातें करने शुरू कर दिए, फोन्स आ गए, किसी की बात आ गई फोन पे, हमको मालूम करना है कि उस वहां क्या हुआ, रिबा शुरू हो गई, गॉसिप शुरू हो गई, ये चीजें वो ज्यारत ट्रिप्स में, व्हेन यू आर इन होली प्लेसेस तुम अपनी जबान को खोलना नहीं, जियारत ऐसे कबूल नहीं होती, जियारत की जगह कोई हॉलीडे रिसोर्ट नहीं कि बैक होम बॉम्बे में बच्चों को स्कूल को छुट्टियां हैं, चलो जाते हैं जियारत को 10 डेज 12 डेज, We'll spend 12 days over there holiday and let's come back. Holiday back home. ये ज़ियारत नहीं, जैसे जा रहे ज़ियारत पे वैसी वापस आ रहे तो ज़ियारत की कबूलियत नहीं। समझ रहे मेरी बात? जैसे हम ज़ियारत पे जाए मदीना या मक्का या करबला या नजफ हशम, जैसे गए थे बॉम्बे से 14 दिन के बाद वापस आए तो वैसे ही आए गए वापस, कोई चीज लेकर नहीं आए। हुक्म क्या है कि जब, अच्छा एक बात और बोल दो, मदीना आप जा रहे हैं, मदीने मुनवरा, मदीने मुनवरा में 6 मासूम है, मासूम आउट ऑफ 14 मासूमी 6 मासूमी मदीने में, सबसे ज्यादा मदीने में एक साथ। मस्जिद नबवी ये वो मस्जिद है कि जिसमें आप खसर नमाज नहीं पढ़ते, पूरी नमाज पढ़ते। जब मस्जिद, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा, मस्जिद की इंपॉर्टेंस बता रहा कि मस्जिद नबवी में पूरी नमाज पढ़ना है। मस्जिद से बाहर आप नमाज पढ़ेंगे जन्नतुल बकरी के पास या होटल में तो आप खसर नमाज पढ़ेंगे, लेकिन मस्जिद नबवी में पढ़ेंगे। जैसे मस्जिद कूफा, मस्जिद कूफा एक ऐसी मस्जिद है कि जहां पे आपकी नमाज पूरी होती, वहां पे आपको खसर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप बोलेंगे यार एक चांस था 2 रकत पढ़ने का, वो भी चला गया। मतलब वो नहीं है 2 रकत पढ़ना, ये तो खुशी की बात है कि 4 रकत पढ़े तो अल्लाह 4 रकत का सवाब देता, तुम्हारा अकाउंट इतना बढ़ जाता। तो मस्जिद नबवी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मस्जिद है जो 100% दुआओं की कबूलियत। वहां पे सिर्फ हम नहीं जाते, अजिन्नाओं को लोगों ने देखा, अजिन्नाओं को, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी जो मुखलिस इमाम के चाहने वाले अजिन्ना। मैं बहुत रोक के पढ़ रहा, इतना बड़ा नमाज का घट्टा, ऐसी बड़ी दाढ़ी, चेहरे से नूर, जो दूसरी मखलूक है। इसलिए कि हमारा हर रसूल और हमारा इमाम, हम जमाने के इमाम को सलाम क्या करते हैं, अस्सलाम वालेका या इमाम इनसे वल जिन्ना, कि आप इंसानों के भी इमाम हैं जिनों के भी इमाम हैं। तो हर रसूल हर इमाम हमारा सिर्फ इंसानों का इमाम नहीं है, जिनों के इमाम भी, जो मुखलिश या जिन, अजिन्ना जो पूरी कौम है, हर मासूम की ज़ियारत करें, मलाइका फरिश्ते। तो मस्जिद नबवी में एंटर कहां से होना, देखिए वहां के रेस्ट्रिक्शंस अपनी जगह, आप वहां जाके ये डिक्लेयर मत करो कि मैं शिया हूं। आप जब जाते तो कोशिश करो कि बाबे जिब्राइल से एंटर हो। ये बाबे जिब्राइल क्या है, जब आप जन्नतुल बकी से, मैं मस्जिद में, मैं मदीने में एंटर हुआ, जन्नतुल बकी से, जन्नतुल बकी सामने है, बीच में पूरी वो दीवार है। तो जब आप जन्नतुल बकी से टूवर्ड्स मस्जिद नबवी जाते तो बिल्कुल जो पहला दरवाजा लिखा हुआ है गेट के ऊपर लिखा हुआ है बाबे जिब्राइल, ये वो दरवाजा है कि जहां से जिब्राइल एंटर होते थे मस्जिद में रसूलुल्लाह को पैगाम देने के लिए। उस जमाने में मस्जिद इतनी बड़ी नहीं थी, उस जमाने की मस्जिद बहुत छोटी थी। अगर आप बाबे जिब्राइल से एंटर, अब दुआएं बता रहा कि मस्जिद नबवी की बरकत है, आप जैसे ही एंटर होते लेफ्ट साइड के ऊपर एक ऐसा पैसेज है लंबा, और वहां पे एक दरवाजा है, डोर है, ये वो दरवाजा है जो शहजादी कोनैन का रूम यही था, जहां पे वो वाकया भी हुआ, उसके बाद का वाकया, वो दरवाजा था कि जहां अल्लाह का रसूल रोज हर नमाज से पहले और हर नमाज के बाद आके जो सलाम करता था कि अस्सलाम अलैका या अहले बैत नबुवा मा दनुसना, वो ये वही दरवाजा है। तो वहां पे और एक एक चीज, जो जालिमों ने जिस दरवाजे को जलाया ये वही दरवाजा है। आज सिल्वर का जलता, पूरा सिल्वर लगा हुआ है उसका, ऐसा दरवाजा। और ये जो पैसेज, ये बीबी का घर था, आज तो पूरा एक पैसेज है, वहां पे उन्होंने डोर भी लगा दी। मैं अब पलट के आऊंगा वापस, खाली मैं आपको नक्शा बता रहा हूं मस्जिद नबवी का, यहाँ की दुआएं क्या है अभी बताता। उसके बाद राइट साइड के ऊपर एक प्लेटफॉर्म है, उर्दू में जिसको चबूतरा बोलेंगे, एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को क्या बोलते हैं, सफा का चबूतरा, लफ्ज सफा, SAFA, सफा का चबूतरा। ये प्लेटफॉर्म जो है ये इतनी अजीब जगह है मस्जिद नबवी की कि तुम्हारी दुआएं ऐसी खबर, जनाब सलमान फारसी इस सफा के चबूतरे पर रहते थे। ये किसके लिए बनाया गया था, जो मुसलमान मदीने से आए थे जिनके पास घर नहीं था, या नए नए जो मुसलमान होते थे कलमा पढ़ते थे रसूल अल्लाह के पास आके, दूसरे छोटे छोटे विलेजेस से, दूसरे शहरों, उनके पास उस जमाने में कोई होटल्स मोटेल्स या गेस्ट हाउसेस नहीं थे, मुसलमान अपने घर में लोगों को रखते थे। लेकिन मुसलमानों के भी हालात इतने ख़राब थे कि उनके पास कोई चार बेडरूम पाँच बेडरूम के फ्लैट्स नहीं थे, छोटे छोटे घर थे। तो जिसके हालात सही थे वो लोग अपने घर में बुला के रखते थे, लेकिन जिसके हालात सही नहीं थे वो लोग नहीं रखते थे। तो जितने नए मुसलमान होते थे कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह का रसूल उनको बोलता था तुम ये सफ़ा के चबूतरे पे रहो, ये जगह पे छोटा सा ऊपर कवर कर दिया गया था, ये मस्जिद के बाहर था, ये कवर कर दिया गया था। और उसमें आके लोग क्या करते थे, दिन भर मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, शाम में आके वहाँ पे सोते थे। तो जनाब सलमान के बारे में भी है कि जब जनाब सलमान नए नए मुसलमान होके आए, कल आपने पूरा वाकया सुना सलमान का मुसलमान कैसे हुए, जब मुसलमान होके आए तो वो भी छः महीने इस सफ़ा के चबूतरे पे रहे। सफ़ा के चबूतरे पे अगर तुमने दो रकत नमाज पढ़ी और हाजत की, वहाँ पर हाजत की नमाज पढ़ना, मैं सिर्फ आज दुआएँ बताऊँगा मस्जिद नबवी में कि आपके हालात सही हों, उम्रे पे जाएं तो आपके किस तरह से आपकी दुआएं और मस्जिद नबवी की आपको इंपॉर्टेंस भी मालूम हो। दो रकत वहां पे हाजत की नमाज पढ़ना, और ये हाजत की नमाज सूरह इन्ना ज़ल्ला पहली रकत में और सूरह इन्ना आतैना कल कौसर, आप ये नमाज पढ़ो इस नियत के साथ कि परवरदिगार ये वही जगह है कि जिसको तेरे हबीब ने बनाया, यानी अल्लाह के रसूल ने इसको इन्वोव किया जगह को, और अल्लाह के रसूल वहां पे आते थे बैठते थे मुसलमानों के साथ, और यहां पे तेरे अजीम बंदों ने आके इबादतें की है, तो उनके वसीले से, तेरे हबीब के वसीले से, उनकी आल के वसीले से तू हमारी हाजत। कोई शक अगर मसफा के चबूतरे, अच्छा ये रिवायत तमाम मुसलमानों के पास भी है, आप जाके वहां पे देखेंगे सफा का जो चबूतरा है, सफा का जो वो जगह है, उस जगह उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अहले सुन्नत भी बैठे रहते हमेशा, जगह आसानी से नहीं मिलती। वहाँ जगह मर्दों को लेना है तो रात के हिस्से में जाना, रात के हिस्से में मतलब तहज्जुद के वक्त अगर तुम वहाँ जाके बैठ जाओ तो तुमको जगह मिलती, या दो रकत नमाज की जगह मिलती। तो कोशिश ये करना कि सफ़ा के प्लेटफॉर्म पर जाके दो रकत नमाज पढ़ना, तुम्हारी हाजात अगर उसके बराबर है, पानी के खतरों के बराबर तुम्हारी हाजात है, और वहाँ बैठ कर तुमने दो ही रकत दो तीन मिनट की इबादत है अगर तुमने नमाज पढ़ी, तो अल्लाह और रसूल का सामने खबर रसूल है, बिल्कुल सामने अल्लाह के रसूल है, और बिल्कुल सामने बीबी का घर है, बिल्कुल सामने बीबी के दरवाजा है, वो डोर है, वहां सफा का चबूतरा मस्जिद नबवी का वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि वहां भी बीबी जहरा का वास्ता दो, उनके घर का वास्ता दो, उस चौकट का वास्ता दो। आप सोचो कि वो चौकट जो है, बीबी का दरवाजा जो है, वो कितना अजीम है कि वहां पर इमाम हसन इमाम हुसैन की विलादत, बर्थ प्लेस भी वही है, इमाम हसन इमाम हुसैन की बर्थ प्लेस, दोनों शहजादियों की बर्थ प्लेस। ने इतना अजीब, वो घर में इमाम अली ने अपनी लाइफ को गुजारा, सिर्फ चार साल मौला जो है कूफा चले गए थे जब आपको हुकूमत मिली थी, फोर या फाइव ईयर्स का वहां का पीरियड है, अदरवाइज पूरा पीरियड जो है इमाम अली उस घर में रहे। आप इमेजिन करो जिस घर में अली और फातिमा ने और बच्चों ने जिंदगी गुजारी, उस घर की या उस जगह की इंपॉर्टेंस कितनी होगी। मस्जिद नबवी में ये इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि सफा के चबूतरे में दो रकअत नमाज पढ़ के जब मौका मिले, जब आपको जाना पड़े, दुआ करो कि अल्लाह मैं तेरे घर में, तेरे हबीब के घर पाऊंगा और सफा के प्लेटफॉर्म पर नमाज पढ़ूंगा। आप देखो कि आपकी दुआ कैसे कबूल होती, आप जल्द से जल्द उम्रे पे जाते और वहां पे दुआ मांगना, इन्ना अंजलना पहली रकत में, इन्ना आतैना कल कौसर दूसरी रकत में। और वहां पे बेहतरीन जगह और क्या है, किसके लिए है, वो गुनाहों की माफी के लिए, जो सबसे बड़ी बात है कि मेरे गुनाह माफ। मस्जिद नबवी जाने के बाद अगर मेरे गुनाह माफ नहीं हो रहे तो फिर हमारी कोई फायदा ही नहीं है जिंदगी का। रसूल के पास जाके, बीबी जहरा के पास जाके अगर मुझे फॉरगिवनेस नहीं मिल रही तो फिर कहीं नहीं मिलने वाली है। अगर अल्लाह का रसूल ना माफ करे तो आप समझे काबे में मिलेगी? तो वो बेहतरीन जगह है कि अपने गुनाहों को याद करो, माफी मांगो सफा के प्लेटफॉर्म पे जाके। उसके बाद ये राइट पे सफा है, लेफ्ट पे प्रॉफिट का सामने, जैसे यहां मैं बैठा हुआ ये प्रॉफिट है, ये बीवी का दरवाजा है। उसके बाद आप एंटर, एंटर होने के बाद वो जगह है कि जहां जिब्राइल, जहां पे बिलाल अजान देता था, ये भी अजीब जगह है, उस जो मेहराब जहां बिलाल अजान देता था। आप सोचो बिलाल ने अजान 13 साल या 11 साल वहां पे दी है। बिलाल का बहुत बड़ा पोजीशन है, बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा स्टेटस है। वहां जाके दुआ क्या करना कि अल्लाह तू मुझे इबादत का शौक पैदा कर, अल्लाह तू मुझे नमाजी बना दे। आई नो ये बहुत डिफिकल्ट दुआ है, सब दुआएं मांगेंगे, नमाजी बनाने की दुआ नहीं मांगते। ये दुआ करो कि अल्लाह मुझे नमाजी बना। अच्छा, इबादत के लिए मैं एक बात यही रोक के बोल दूं, आगे ना बढ़ जाओ। इबादत का शौक सबको शौक है, इबादत गौर से सुनो, इबादत का शौक सबको है। जब मैं एक्चुअल जब मैं सामेरा जाना था मुझे बताना था, लेकिन अब मैंने छेड़ दिया तो बोल देता ये सामेरे की दुआ है। अगर इबादत का शौक तुमको पैदा, देखिए इंटरेस्ट सबको रहता कि मैं अल्लाह की इबादत करूं, लेकिन मौका नहीं मिलता, मैं नहीं करता। मेरी नीयत है कि मैं नमाजें सब पढ़ूं, मैं नहीं पढ़ता। मेरी नीयत है कि मैं किसी को सदका दूं, मैं नहीं देता। मेरी नीयत है कि मैं किसी की हेल्प करूं, मैं नहीं करता। मेरी नीयत है कि मैं ये अच्छा काम करूं, नहीं करता। इबादत है, इबादत के शौक के लिए और इबादत की ये दुआ फुलफिल होने के लिए अल्लाह का रसूल बोलता, मेरे 10वें और 11वें वारिस का वास्ता दो, अल्लाह तुम्हारी को इबादत का शौक पैदा कर देगा। इन्हें 10वें इमाम और 11वें एक सलावत पढ़े, मैं खाली ये ऐलान कर दूं कि थैंक यू वेरी मच। कल मैंने ये अनफाल वालों का ऐलान किया और लोगों ने आके वो सदके के बॉक्सेस लिए। ये बॉक्सेस फ्री हैं, ये बॉक्सेस के लिए वो लोग चार्ज नहीं कर रहे कि कोई पे करने की जरूरत नहीं है, ये फ्री बॉक्सेस है। खाली इसमें सदका डालो और इमाम का, मासूम का, अपना औलाद का सदका डालो, डाल के उनको वो बॉक्सेस दे दो। बहरहाल वो लोग आपके शुक्रगुजार है कि काफी अच्छा रिस्पॉन्स हुआ। आज भी आप वो बॉक्सेस लें, फ्री बॉक्सेस है, और लेकिन उसमें काम करो। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तो हुआ क्या, तो वहां पे जो बिलाल के पास जाकर, वो भी एक अजीब जगह है। हम क्या करते हैं, सीधे सरकार के पास जाते हैं, ये सारी जगहों पर आमतौर पर नहीं जाते। मैं आपको मस्जिद नबवी की इंपॉर्टेंस बता रहा कि कितनी इंपॉर्टेंट है। आधे से ज्यादा दीन मदीने में आया, मोर देन हाफ, 60-70% यूकर से शरीयत जो आई ना वो मदीने में ज्यादा आई। मक्के में रोजे वाजिब नहीं थे, मक्के में आपको हैरत होगी, रमजान के रोजे मक्के में वाजिब नहीं हुए, मदीने में वाजिब हुए। और कब वाजिब हुए, इमाम हसन जिस साल पैदा हुए, 2 हिजरी, जिस साल मेरे मौला हसन की विलादत हुई उस साल रमजान के रोजे वाजिब है। यानी आपकी पूरी शरीयत जो वाजिब हुई ना वो मदीने में हुई, ज्यादा 75-80%। नमाज जनाजा मक्के में नहीं थी, मदीने में आई। मक्के में नहीं थी नमाज जनाजा, अगर नमाज जनाजा होती तो जनाब अबू तालिब और बीबी खदीजा की नमाज होती, नहीं जनाब अबू तालिब और बीबी खदीजा की नमाज जनाजा नहीं हुई। आज ये लोग एतराज करते कि अगर मुसलमान थे तो इनकी जनाजे की नमाज क्यों नहीं हुई, तो उनको बताओ कि जनाजे की नमाज वाजिब नहीं आई वहां पे, लेकिन जब वाजिब हो गई थी क्यों नहीं पढ़ी, नहीं समझे आप? वाजिब हो गई थी तो रसूल की क्यों नहीं पढ़ी, वो याद क्यों नहीं है, वो याद क्यों है तुमको, जब तो शरीयत आई नहीं थी। शराब मदीने में आके हराम हुई, मक्के में नहीं हुई। रोजे रमजान के मदीने में आके वाजिब हुए, ऐसे कई चीजें। तो ये सारी शरीयत आई मदीने में मस्जिद नबवी, अल्लाह का रसूल पूरे इस्लाम को प्रेजेंट किया मस्जिद नबवी से, पूरा इस्लाम को जितनी शरीयत के बातें की वो मस्जिद से की, इसलिए कि मदीने में इस्लाम ऐसा ग्रो करा। तो वहां से निकलो, निकलने के बाद उस मेहराब पे जाओ, मैं तेज जा रहा, उस मेहराब पे जाओ कि जहां अल्लाह का रसूल नमाज पढ़ता था, वो गोल्डन मेहराब आज भी ये बंद है लेकिन आपको नजर आती। थोड़ी मस्जिद नबवी में जाके मेहनत करना, आसानी से तुमको इन जगहों पे इबादत करने का शौक नहीं। मैं कोई लंबी चौड़ी इबादत नहीं दे रहा, दो दो रकत नमाज दे रहा आपको, सिर्फ दो दो रकत नमाज पढ़ के तुम वहीं पे डेस्टिनी को बदलो। आप सोचो कि अगर कोई शख्स ये नीयत करे कि मैं अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज पढ़ूं, तो उस मेहराब के पास जाके दो रकत नमाज पढ़े, तो अल्लाह इतना करीम है, तुम्हारी नीयत वो है कि मैं सरकार के पीछे नमाज पढ़, अल्लाह मुझे सरकार के पीछे नमाज पढ़ने की मौका दे, तो अगर तुम मस्जिद नबवी, औरत भी पढ़ सकती है, सारे अमल औरतें कर सकते, इसलिए कि जब लेडीज टाइम होते तो ये सारी जगहें खुली हुई रहती। तो दो रकत नमाज अगर कोई पढ़े वहां पर और नीयत करके दुआ दे के परवरदिगार वो अजर दे, कि जो सरकार के पीछे पड़ने का है वो जगह है कि जहां अल्लाह का रसूल नमाज पढ़ाता था, उनके पीछे मौला अली रहते थे, तो आप सोचो उन्हीं के साथ इमाम हसन इमाम हुसैन रहते थे। ये वही जगह है मेहराब के जहां पे रसूल अल्लाह सजदे में थे और हुसैन सजदे पे पीठ पे आ गए थे। क्या सुन रहे हैं ये वही जगह है कि जहां पे मौला अली नमाज पढ़ते थे, आप भी वहीं पे जाके नमाज पढ़ना। कहां पे? जो मेहराब में। आमतौर पे वहां कोई नमाज नहीं पढ़ता, वो बंद रहती जगह, लेकिन अगर आपने नमाज पढ़ी और दुआ की कि परवरदिगार मैं आज पैदा हुआ, उस वक्त रहता तो तेरे हबीब के पीछे नमाज पढ़ता, तू मुझे वो अजर दे। आप इमेजिन करो कि रसूल अल्लाह के पीछे कोई नमाज पढ़े तो जो सवाब है वो दो रकअत नमाज पढ़ने का सवाब, अगर वहां पे कोई जाके नमाज। वो जगह पे दुआएं मांगो। दुआएं मांगने में ये दुश्मन आपको रोकेंगे नहीं। आप ऐसा प्रिटेंड करो, लेकिन वो लोग क़िबला रूह भी है, क़िबला रूह है, तो आप ऐसा प्रिटेंड करो कि हमको जो है मैं दुआ मांग रहा, और दुआ मांगने के लिए ये लोग रोकते नहीं, आप दुआ मांगते जो वहां पे सारी दुआ। ज्यादा टाइम, फिर सुनो गौर से, मस्जिद मदीना मुनव्वरा जब जाना तो ज्यादा टाइम स्पेंड करो मस्जिद के अंदर, होटल में स्पेंड मत करो। वहां पे जाओ तो लिटरली कैश करवाओ, कैश करवाओ, यानी आप जाके हर चीज अपने अमाल को कैश करवा सकते, लिटरली तो मिलियनर बन के आ सकते हो वहां मदीने में जाके। वो ये वो जगह है कि मदीने में आपको हर स्टेप के ऊपर कोई ना कोई मासूम मिलता, इसलिए उनका पूरा बचपन वैसे गुजरा। वो जगह मैं बहुत तेज से ज्यादा, वरना मैं आधा आधा घंटा एक एक जगह पे बोलूं। वहां से पलटो लेफ्ट साइड के ऊपर, सामने सरकार का रोजा है। अल्लाह हमको ज्यारत नसीब करे। ऐसा नहीं, एक बाबा से बलन सलवात पढ़ो, वहां से प्लीज मुझे पढ़ने दो। टाइम तेजी से निकल गया, 40 मिनट की मजलिस हो गई ऑलरेडी। फिर आप लेफ्ट में मोड़ो, सामने सरकार का रोजा। अब ये मिंबर जो मैंने बताया और ये सरकार का रोजा, मेरी तरफ देखो, मिंबर और ये सरकार का रोजा, ये जो स्पॉट है इसको बोलते हैं रियाजुल जन्ना, पार्ट ऑफ जन्ना, जन्नत की जगह, जन्नत का हिस्सा। ये हम नहीं बोल रहे, मुसलमान सारे उसको जन्नत का हिस्सा, सुन्नी शिया सबके पास है। ये रसूलुल्लाह की हदीस है, मेरे मिंबर और मेरी खबर के बीच का जो हिस्सा है वो जन्नत का हिस्सा है। वहां पे अगर दो रकत कोई नमाज पढ़े, सिर्फ दो रकत, ऐसा है कि जैसे तुमने जन्नत में नमाज पढ़ी। आप बोलेंगे यार जन्नत में भी जाके नमाज पढ़ना पड़ेगा, तो यहीं पढ़ लो जन्नत में, ये अल्लाह की इबादत है ना, कितना बड़ा अजर है। जैसा वहां मक्के में मैंने बताया था कि उस जगह पर दो रकत नमाज पढ़ने का ऐसा जैसे काबे के अंदर नमाज पढ़ी, मदीने में ये है। और वहां पे आप सोचो जन्नत में रहमत है ना, तो वहां पे आपके साथ रहमतुल आलमीन है। दो चीजें, जन्नत रहमत, और असल जो जन्नत की रहमत है वो अल्लाह का रसूल है। तो वहां पे अगर आपको जगह भी नहीं मिल रही नमाज पढ़ने की, आप तेज तेज नमाज पढ़ो, दो रकत पढ़ो, लेकिन हर जगह मैं आपको बोलता हूं वहां पे कारपेट है, वहां उस कारपेट पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते। तो अपने साथ टिश्यू रखो, सिजदेगा मत रखो, अगर सिजदेगा है भी तो इतने स्मार्ट बन के सिजदेगा हाथ में रखो, बस रखो, सजदा करो, पहला सजदा करो उठा लो, दूसरा सजदा करो उठा लो, रखो मत वरना उसकी बेहुर्मती करेगा। इवन टिश्यू अगर तुम ले रहे तो टिश्यू भी मत रखो, सजदा करो उठा लो। कारपेट पे सजदा नहीं होता, क्यों नहीं होता कारपेट पे? इसका बेसिक चीज हमारे उलमा ये बोलते कि वो चीज गौर से सुन लेना कि सजदा किस पे होता, सजदा किस पे नहीं होता। ये भी 1000 सवाल होते कि किस पे सजदा कर सकते क्यों नहीं कर सकते, पूरे मुसलमान कर रहे तो हम क्यों नहीं कर रहे। वो चीजें गौर से सुनो, वो चीजें जो खाने में आती उस पर सजदा नहीं होता, वो चीजें जो पहनने में आती उस पर सजदा नहीं होता। ये बेसिक चीजें, सजदा किस पे होता किस पे नहीं होता। अब आप निकाल लो सारी चीजें, जो चीजें खाते हैं आप और जानवर उस चीज पे आप सजदा नहीं कर सकते, जो चीजें आप पहनते हैं उस पर सजदा नहीं, उसके अलावा सब पे सजदा कर, हर चीज पाक है, हर जमीन पाक है, ये दो चीजें हैं, ये चीज पे ये है सजदे का बेसिक चीज कि वाई वी डोंट डू, ये कैसा कैसा सजदा किस पे किया जाता। अब जो चीजें जैसे मनी प्लांट है या वो घास ग्रास जो जानवर खाती है उस पर आप सजदा नहीं कर सकते, नॉर्मल पत्ता जो जानवर नहीं खाते आप उस पर सजदा कर सकते। बहर अब ये इसके मुझे मसले बताना नहीं है, मैं आपको खाली बता रहा। तो वहां पे जब जाना तो दो ही रकात नमाज पढ़ो जैसे तुमने जन्नत में नमाज पढ़ी, और उसके बाद सामने खबरे रसूल सामने सरकार का रोना, कुछ मत करो, आपको हाथ नहीं लगा सकते। अच्छा सरकार का रोना जो है ना, आप पलट के अगर आए तो बीच का हिस्सा, आप हर आदमी ये समझ रहा कि एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे नहीं है, लेफ्ट और राइट पे नहीं, वो लोग एक साइड पे है, सरकार एक साइड पे। अब तक ये इंप्रेशन लोगों को है, मुझसे पूछा कि एक राइट पे एक लेफ्ट पे, शोराय कराम भी बहुत जो बेचारे पढ़ते हैं तो बोलते एक सीधे पे एक उल्टे पे बैठा हुआ है, वो कौन बैठा हुआ है मुझे नहीं मालूम, मैं बोल रहा। तो वो लोग राइट और लेफ्ट पे नहीं है, ये वो लोग ऐसा है सरकार इधर हटके, बीच की जो दरवाजा है वो सरकार का, वहां पे खड़े रह के अगर रसूल को सलाम करे तो सिर्फ ये नहीं बोला सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, वो सलाम एक्सेप्टेबल ही नहीं, रसूल के साथ अहले बैत पे सलाम करना लाजिम है, इसलिए कि अल्लाह का रसूल भी हमेशा अहले बैत को सलाम किया। तो सुन्नत रसूल ये कि वहां जाकर अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलाम अलैका या अहले बैत नबुवा व मादना रिसाला, ये अल्लाह के रसूल के जुमले थे, ये अल्लाह का रसूल हमेशा बीवी के दरवाजे पे जाके ये वर्ड्स को दोहराता था। तो अल्लाह के रसूल के रोजे पे जाके तुमको भी ये वर्ड्स को दोहराना है, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजिम बोलना, उसके बाद बोलो अस्सलाम अलैका या अहले बैत नबुवा व मादना रिसाला। ये बोलने से क्या है कि तुम्हारे सलाम भी एक्सेप्टेबल है, इसलिए कि एक रिवायत यह है कि बीबी जहरा वहीं पे दफन है, हमारी शहजादी वहीं पे दफन है, एक रिवायत से, एक रिवायत से ये कि रियाजुल जन्ना में है, तो रियाजुल जन्ना की जगह तो नहीं मालूम, लेकिन जब सरकार दफन है हो सकता है बीबी वहीं हो। तो अगर आपने सलाम अलैका या अहले बैत नबुवा बोला तो मस्जिद नबवी का जो मकसद है, जो आपकी इबादत जो भी आपने दो तीन घंटे की, बीबी के सलाम रसूल के सलाम से तुम्हारी इबादत है कबूल है। वाह, ये मैंने बहुत तेजी के साथ पूरा मदीने की मस्जिद नबवी बता दी, जो मेरा आमतौर पे मेरा तरीका भी नहीं, बहुत तेजी से बता दी। जब भी जाना मस्जिद नबवी मदीना, गुसल करके जरूर जाना, लाजिम है गुसल, वाजिब नहीं है, लाजिम है कि गुसल करके मदीने में रोज छह नियत की गुसल करो, एक गुसल करो नियतें छह करो, पहला गुसल की नियत ये करो कि अल्लाह मैं गुसल करता हूं मदीने में ज्यारत पे आने के, मदीने में एंटर होने के ज्यारत की, फिर गुसल की मैं नियत करो कि मैं गुसल करता हूं मदीने मुनवरा में मस्जिद नबवी की ज्यारत के, मैं गुसल करता हूं अल्लाह के रसूल और मादर हसनैन की ज्यारत के लिए, फिर मैं गुसल करता हूं चारों इमामों के नाम ले लो, मैं गुसल करता हूं अहले बैत नबुवा मादर रिसाला की ज्यारत के लिए, मैं गुसल करता हूं मदीने में अल्लाह की रहमत को अपने पास लेने के लिए, इसलिए कि रहमत लिल आलमीन का शहर है, ये सिटी रहमत लिल आलमीन की सिटी है। तो आपको अगर रहमत लेना चाहते तो उसके लिए नियत करो, फिर गुसल करो कि इस मदीने में मैं अपने इमाम की ज्यारत, जमाने के इमाम की ज्यारत के लिए मैं गुसल करता हूं, जमाने के इमाम की सलामती के लिए मैं गुसल करता हूं, गुनाहों की माफी के लिए मैं गुसल करता हूं, ये जन्नतुल बकी में जो हजारों लाखों मोमिनीन दफन है, जो मोमिनीन दफन है उनकी मगफिरत की दुआ, और आखिर में बोलो कि मैं गुसल करता हूं मदीने मुनवरा में हुसैन की जियारत पढ़ने के लिए कुर्बत अलिल्लाह, ये नियत है। अब मस्जिद नबवी खत्म हुई, मस्जिद अब मेरी तरफ देखो, मस्जिद नबवी जब बाब जिब्राइल के जो इधर का हिस्सा है वो महल बनी हाशिम था, वो पूरा पैसेज जो है मस्जिद खत्म होती उसके बिल्कुल पीछे का हिस्सा, ये महल बनी हाशिम था मदीने का, खत्म हो गया बिल्कुल चटियल मैदान हो गया, ये महल बनी हाशिम, उसके पीछे एक मस्जिद है रद्द शम्स, ये कौन सी मस्जिद है, आज बंद है, बाहरी ज्यारत करना पड़ता। अब देखो ज्यादतें कितने हैं मदीने पीछे का हिस्सा, यहां पे कितनी बड़ी ज्यादत को बोले, अभी मैं बकी में एंटर ही नहीं हुआ, मस्जिद नबवी के जस्ट बिहाइंड पूरी मस्जिद के बिहाइंड। रद्द शम्स एक मस्जिद है, रद्द शम्स ने सूरज का पलटाने वाली मस्जिद, ये वो मस्जिद है जहां इमाम अली ने मदीने में सूरज को पलटाया था। आपने बड़ी इजी लेके सुना, अली ने सूरज वूरज को नहीं पलटाया था, फिर बोल रहा अली ने सूरज को नहीं पलटाया था, अबू तुराब ने तुराब को पलटाया था, अली ने जमीन को ऐसा किया था, इसलिए कि सूरज के अतराब जमीन घूम रही, सूरज जमीन से नहीं घूम रहा, जमीन के अतराब मौला अली ने जमीन को ऐसा किया था तो सूरज जो पलटा था, ये वही जगह है कि जहां पे जो रद्द शम्स है वहां पे। उसके बाद सामने जन्नतुल बकी, आज मैं जन्नतुल बकी को नहीं छेड़ता, छेड़ूंगा तो फिर वहां 15-20 मिनट निकल जाएंगे। उसके बाद जन्नतुल मदीने में वो जगह है कि जहां पे मुबाहले का वाकया हुआ था, वो हार्डली 1 किलोमीटर के ऊपर भी नहीं, हार्डली 1 किलोमीटर, लेकिन वहां पे एक जगह बनी हुई है कि ये नहीं है लिखा हुआ कि ये वही जगह जब मुबाहला हुआ। तो आप सोचो कि मस्जिद नबवी जो था वो रसूल का घर था, वहां से ये अहले बैत जो है मदीने के बाहर गए थे, ये जो अभी मुबाहले का वाकया नसारा नजरान से जो मुबाहला हुआ था वो वहीं पे हुआ था वहां पे। उसके बाद मदीने में वो जगह है कि जहां वो रिवायत जो कहानी पढ़ी जाती है हमारी औरतों में, बड़ी मशहूर कहानी है एक यहूदी की कि बेटी की शादी में बीबी जहरा गई थी, ये वो जगह भी वहां पे मौजूद है। जो आज कोई भूवो नहीं, आप कहानी की मन्नत मांगो हमारी औरतों में, आई डोंट नो खोजे भाइयों के पास कहानी है या नहीं है, तो ये सब कॉन्टिनेंट में बड़ी मशहूर कहानी है। और वहां पे कोई जाए और जाके उस जगह पर बीबी के लिए सलवात पढ़े, मादर हुसैन के लिए सलवात पढ़े, और सलवात पढ़ के दुआ करे। अगर लड़की कोई जाए शादी के लिए दुआ करना चाहते, शादी के लिए, आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही, जब भी हम मेरे साथ लोग गए, उन लोगों ने दुआएं मांगी और फिर उनको बताया, वो और खवातीन अमेरिका से और लंदन से गए और जाके दुआ मांगी, इसलिए कि वहाँ पे बीबी जहरा का वास्ता है, बीबी जहरा का वास्ता देकर अगर कोई दुआ मांगे तो उसका तो 100% उसकी दुआ पूरा ही होना है। और उस जगह पर जाके अगर कोई शख्स दुआ मांगे, बीबी को सलवात का हदिया करे, 100 मरतबा सलवात पढ़े और सलवात का हदिया करके दुआ करे कि परवरदिगार, लड़की खुद बोले कि बीबी आप अपनी तरफ से मुझे इमाम हुसैन का चाहने वाला अता करो या मौला अली का चाहने वाला अता करो। अगर लड़की खुद दुआ मांगे उस जगह पे जाके तो वो जो है वो दुआ ऐसे कबूल होती कि उसकी शादी होती और बहुत जल्दी होती। बीबी को बीच में रखना, बीबी को वास्ता देना, मादर हसनैन को वास्ता दो उनके बच्चों का, और लड़की खुद बोले, लड़की की माँ बोले, लड़की का बाप बोले, या आप नहीं जा रहे, या बॉम्बे में कोई ऐसी लड़कियाँ जिसकी शादी नहीं हो रही तो वो कोई जा रहा मदीने की ज्यारत को, तो ये मैसेज कहला दे कि मैं जा, आप जाके उस जगह पे जाके वहां पे तुम दुआ मांगो शादी के लिए, जो इस लड़की के लिए भी शादी के लिए आप दुआ कर रहे हैं वहां शादी की दुआ कबूल होती। वो जगह वहां पे वही 1 किलोमीटर के ऊपर है, ये मुबाहले का मैदान वही है। और असल चीज मदीने में और क्या है, बाग फिदक है, बीबी का वो बाग जिसको दुश्मनों ने ले लिया था, वो जगह आज भी मौजूद है। अब वैसा फार्म हाउस नहीं है, वो तो माइल्स एंड माइल्स एंड माइल्स में था, वो श्रिंक होके बिल्कुल छोटा सा हो गया। आज भी वो बाग, मैंने ज़ियारत की है उस बाग की, वहां खजूर के जो झाड़ है, डेट्स के जो ट्रीज है, इतने स्वीट, इतने जूसी वहां के खजूर बाग फिदक के, कि अगर आप एक भी डेट लेके मुंह में रखे तो ऐसे मालूम होता कि जैसे आप बिल्कुल, अब मैं तो नहीं खाता रसगुल्ला गुलाब जामुन जिसको बोलते नहीं, बिल्कुल स्वीट, इतने जूसी कि आप मुंह में जाओ खत्म हो जाए। आज भी वो बाग है, लेकिन ये लोग बोलते नहीं कि ये बाग फिजक है। कभी आप चलो तो इंशाल्लाह बताओ, इंशाल्लाह बाग फिजक वहां मौजूद है, वहां जाना जरूर, इसलिए कि ये हमारी मां का हक है, किसी का नहीं, डट के जाना कि मेरी मां की प्रॉपर्टी है इसलिए मैं जा रहा हूं। ये सारी चीजें वहां पे है। उसके बाद एक कुआं है, इसकी भी अजीब तारीख है, वेल, कुआं है ना, वेल, एक वेल है वहां, इसकी भी अजीब तारीख है। मदीने मुनव्वरा का ये वेल, बीमारियां 1000 खुदा ना खास्ता हो, अल्लाह सारे बीमारों को शिफा दे। एक मोमिन वर्सोवा में, उसको बेचारे को कैंसर हो गया चेस्ट के ऊपर, एक खातून को कैंसर हो, मैं आज का वास्ता देके दुआ कर रहा, भूल ना जाऊं कि उनका नाम सईद साहब, सईद जैदी, के परवरदिगार आज शहजाद अली अकबर का दिन है, उनके जख्मी सीने का वास्ता, जो जो इस वक्त बीमार हैं, हमारे अकबर भाई फूल वाले हैं, एक मरसिया खान अफसर भाई है, दुनिया में जान जा, और ये सईद भाई जैदी साहब, अल्लाह इन सब को शहजादे के सदक़े में इस बीमारी से फौरन नजात दे दे, और जो बीमारियां हमारे जिस्मों में उसको निकाल दे। एक सलवात पढ़ लें बीमारों की शिफा के लिए। बस बस बस, टाइम बिल्कुल हो गया। तो वहां पे जाने वाले बाग़ फिदक वहां पर है, और वो कुआं है, वो वेल है, आपको अजीब दिखेगा ये वेल क्या है। ये वेल वो है कि जहां से पानी लाकर अल्लाह के रसूल को इस पानी से गुसल दिया गया था। कितनी अजीब बात है नहीं। कैसा पानी होगा कि जिस पानी को रसूल ने सेलेक्ट किया, आप सोचो, मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूं आपको, मदीने की ज़ियारत में जिस पानी, वैसे हर पानी पाक है, हर कुएं का पानी पाक है, कोई ऐसा पानी नहीं है जो नीचे से आ रहा हो नजिस है, या दरिया का कोई पानी। लेकिन अल्लाह के रसूल ने आउट ऑफ, मिसाल के तौर पे 100 वेल्स थी मदीने में, आउट ऑफ 100 वेल्स में, मिसाल दे रहा, आउट ऑफ 100 वेल्स में उन्होंने इस वेल को सेलेक्ट किया कि इमाम अली को बोला। आप जानते बेहतर कि अल्लाह के रसूल का कोई अमल अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं होता। तो अल्लाह की मर्जी भी यह है कि वो पानी में कितनी शिफा है, कि जिस पानी से लाकर सरकार को गुस्ल दिया गया था वो वेल है। तो वहां जब जाना तो मेरी रिक्वेस्ट का पानी जरूर लेना, जैसे तुम जमजम का पानी लेते हो ना, उसी तरह उस वेल का पानी जरूर लेना। एक और जगह है जिसे बीर अली भी कहते हैं, ये वो कुआं है जिसको इमाम अली ने डिग किया था और इमाम अली ने इस कुएं को बनाया था। ये दो चीजें मदीने की बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो तुमको बीमारियों से बचाए, रिस्क को खोले। अगर वो पानी कोई पिए रोज रोज पानी पिए, तो पेट की, पेट को क्या है, हर बीमारी पेट से शुरू होती, पेट की सारी बीमारियां दूर हो जाती। यहां तक के बाद उलमा ने कहा कि अगर कोई जईफ है तो ताकत आती। अब मैं जुमला ऐड कर रहा हूं, बूढ़ा है तो जवान हो जाता। अगर जवान होना चाहते तो बीर अली का पानी पियो या उस कुएं का पानी पियो जिससे, ये उलमा ने नहीं लिखा, ये मैं बोल। तो वो कुआं भी वहां पर मौजूद है। अब मैं इसकी खाली डिटेल में नहीं जा रहा, वरना जा सकता मैं डिटेल में, कि वहां जाओ तो ये कुएं के पास जाकर पानी लो और हाथों को उठा के दुआ करो कि परवरदिगार ये वो पानी जो तेरे हबीब ने इस्तेमाल किया, उसी हबीब का वास्ता। रिस्क के लिए बेहतरीन जगह उठा के वहां पे दुआ करो कि तेरे हबीब ने इसको रिकमेंड किया, तेरे हबीब का पानी बॉडी पे इस्तेमाल हुआ, तो कितना पानी पहले से बाबरकत होता और कितना बाबरकत पानी है। दुआ करो, तुम्हारे रिस्क के दरवाजे खुलेंगे अगर उस बीर अली के पास जाकर या उस कुएं के पास जाकर कि जहां अल्लाह के रसूल के लिए इस्तेमाल किया। मैंने एक आधे घंटे में पूरा स्केच खींच दिया मदीने का, लेकिन मैं अफसोस से बोला, रियली आई एम सैड टू से, कि मैं क्या करूं, मैं डिटेल में जाता तीन दिन मदीने मुनव्वरा को लेता, लेकिन मदीने मुनव्वरा को मैं खत्म कर रहा। इंशाल्लाह कल से नजफ अशरफ। देखिए मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं खाली स्पॉट्स बता दिया, टाइम निकल गया, लेकिन जो जो चीजें बताई उस पर जाके अब जब तुम ज्यारत को जाना तो तुम तलाश करना, तुम ढूंढना, तुमको मालूम होना कि तुम कहां पर है, मस्जिद नबवी में एंटर होना तो तुम क्या करना। जो हिस्ट्री को मुझे बताना था मैंने मस्जिद नबवी की हिस्ट्री बताई, अभी मैं जन्नतुल बकी में नहीं हुआ एंटर, अब जन्नतुल बकी में जाता 10 मिनट मेरे पास है, 5 मिनट है, उसके बाद मसायब आ जाऊंगे, इसलिए मसायब ज्यादा है। जन्नतुल बकी रसूल के जमाने में जन्नतुल बकी मदीना सिटी से बाहर थी, आउट ऑफ सिटी थी, ये खबरस्तान, ये सेमेट्री जन्नतुल बकी का शहर से बाहर था, सिटी से बाहर थी, लेकिन आज बिल्कुल एक हो गया, खबरे रसूल और जन्नतुल बकी बिल्कुल एक है। जन्नतुल बकी क्या है, ये सेकेंड सेमेट्री ऑफ इस्लाम है, पहली कौन सी है, जन्नतुल मौला, जहां पे बीबी खतीजा है, जनाब अबू तालिब है, जनाब अब्द मनाफ है, जनाब अब्दुल मुतलिब है, जनाब हाशिम है, पूरी फैमिली वहां पे जन्नतुल मौला। बखी के अंदर कौन है, बीबी आमिना। एक रिवायत ये नहीं है कि बीबी आमिना मदीने में दफन है, लेकिन अबहा एक जगह है मदीने सिटी से थोड़ी सी। जनाब अब्दुल्ला के बारे में मैंने कहा था कि जन्नतुल बकी और मस्जिद नबवी का जो बीच का हिस्सा है वहां कहीं जनाब अब्दुल्ला दफन है। इसलिए कि जब जनाब अब्दुल्ला की वफात हुई थी उस वक्त जन्नतुल बकी इस्लाम की होली ग्रेवयार्ड नहीं था, इसलिए कि ज़ाहिरी तौर पे इस्लाम नहीं आया था। तो इस्लाम आने के बाद का पार्ट, अब आप जब बकी में एंटर होते, बकी में एंटर हो तो वो सलाम ज़रूर पढ़ो जो मैंने आपके आरामबाग में और अहमदाबाद में लिखा हुआ है, इसलिए कि बकी के अंदर मासूमीन के अलावा सारे खानदान अहले बैत भी हैं और सारे मोमिनीन जो पुराने हैं वो सब वही दफन, पूरे वही दफन। बकी एक्चुअली अगर आप देखें तो इस वक्त 3-4 फ्लोर्स के ऊपर है, ये दुश्मनों ने तबाह कर दिया। और बकी अब जो बकी है, ये बकी ऐसा नहीं था, ऐसा बकी नहीं था। बकी अगर इस वक्त मिसाल के तौर पर 4 एकड़ के ऊपर तो 20 एकड़ पर था बकी। इतना बड़ा कब्रस्तान, इतना बड़ा कब्रस्तान है, मैंने खुद पुराना कब्रस्तान देखा, उसकी पिक्चर्स मौजूद है। बकी के अंदर एंटर होने के बाद वो सलाम जरूर पढ़ना, वहां लिखा हुआ नहीं है सलाम, आप अपने साथ टेलीफोन पे लेके जाओ उसका पिक्चर लो, अस्सलाम वालेकुम या अहले ला इलाहा इल्लल्लाह मिन अहले ला इलाहा, वो वाला सलाम पिक्चर टेलीफोन पे 1 मिनट का सलाम है, 4 या 5 लाइन है। आरामबाग से किताब से पिक्चर ले लो साथ रखो और टेलीफोन लेके गेट के पास एंटर होकर सलाम पढ़ना। औरतें कहां पढ़े, औरतें एंटर नहीं हो सकती। जहां बीबी उम्मुल बनीन दफन है वहां औरतें देख सकती, वहां तक औरत जा सकती है, बाहर से, नॉट फ्रॉम इनसाइड, बाहर से वो हिस्सा औरत ज़ियारत कर सकती। ये सलाम पढ़ो, सलाम पढ़ने के बाद राइट साइड पे मासूमीन है। मुझे अफसोस भी होता कि इतने पिक्चर्स हैं जन्नतुल बकी के, अब हमारे जहनों में तो नक्श है जन्नतुल बकी, यानी स्टैंप है, सबको मालूम है जन्नतुल बकी के वो पिक्चर से मासूम के रोज, उसके बावजूद स्टिल यू आस्क कि कौन है, इमाम हसन कहाँ है, चौथे इमाम कहाँ है। वेरी सैड। पहली जो ग्रेव, अब आप मेरी तरफ देखो, जो 4 ग्रेव्स बताते ऐसा, ऊपर की ग्रेव साइड की ग्रेव की बात नहीं कर रहा मैं बोल रहा हूं ये जो 4 ग्रेव एक साथ जो पिक्चर्स आते, ये तो सबको मालूम है, ये 4 जो ग्रेव है इसमें फर्स्ट ग्रेव पहली जो खबर है वो इमाम हसन अली साहब, उसके बाद का स्टोन जो है वो चौथे इमाम है, फोर्थ इमाम इमाम जनरल आबिदीन साहब, उसके बाद का स्टोन जो है वो फिफ्थ इमाम है, उसके बाद का स्टोन सिक्स्थ इमाम। ये 4 ग्रेव्स एक साथ है, 4 स्टोन्स बोलो, क्या ग्रेव बोलो, जुल्म अजीम है। अल्लाह जन्नतुल बकी की तामीर जल्द से जल्द करा दे, जन्नतुल बकी को इनदाम करने वालों को नीस तो नाबूद कर दे। ये 4 ग्रेव्स, उसके ऊपर की जो ग्रेव है एक सिंगल, एक रिवायत से वो बीबी फातिमा बिनते असद की है, मादर इमाम अली, एक रिवायत से वो ग्रेव शहजादी कौनैन की, बीबी मादर हसनैन की, एक रिवाज। और ये वो सिंगल खबर, उसके बाद ये 4 है। 4 के बाद जो राइट पे अगेन सिंगल है वो जो है वो जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब है, अल्लाह के रसूल के चचा की, जिससे ये बनी अब्बास चले पूरा, ये पूरी बनी अब्बास की फैमिली जो चली वो उन्हीं की नस्ल है, अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब जनाब अबू तालिब के सौतेले भाई, भाई अल्लाह के रसूल के चचा, वो उनकी लहग्रे। उसके बाद ये तो मैंने बहुत, अब मैं क्या करूं, मजबूरी मेरी। फिर आप एंटर हो, थोड़ा सा एंटर हो गए तो वहीं पे दोनों ग्रेव्स हैं पत्थर, जनाब इब्राहिम है, जनाब खासिम है, अल्लाह के रसूल के दोनों बेटे, बीबी जहरा के रियल ओन ब्रदर्स। उसके आगे बढ़ो, अजवाज रसूल है, वाइफ्स ऑफ प्रॉफिट, वाइफ्स ऑफ प्रॉफिट में मैं कैसा पढ़ू, वो लोग नहीं है, मेरी मजलिस लाइफ जारी तो आई डोंट वांट एनी कंट्रोवर्सी, वो लोग नहीं है, वो वाइफ्स हैं जिसको रसूल चाहते थे, जो रसूल को चाहते थे। मैंने बंद अल्फाज में बोला, जो भी बोला, जो रसूल जिसको चाहते थे, जो रसूल अल्लाह को चाहते थे, वो वाइफ्स की ग्रेव वहां पे। मैं नाम नहीं ले रहा, नाम आप यू नो वेरी वेल। उसके बाद और एंटर हो, जब आप बिल्कुल मिडल ऑफ दी जन्नतुल बकी में पहुंचेंगे तो वहां पे एक लहद है, जहां जिसको जो बीबी फातिमा बिनते, उसकी ऐसे बाउंड्री लगी हुई है, वो है बीबी फातिमा बिनते असद की, एक रिवाज।
दो रिवायतें हैं कि एक बीबी फातिमा बिनते असद वहां पर है या बीबी फातिमा बिनते असद यहां है। एक रिवायत यह है कि बीबी वहां है और यह मादर हसनैन की है, लेकिन कंफर्म किसी मुश्तहद ने, मर्जा ने, मुफस्सिर ने, किसी आलिम दीन ने नहीं लिखा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी से रिजवी कॉलेज में इतने बड़े मजमे के सामने बोल रहा कि कोई आलिम दीन ने कंफर्म नहीं लिखा कि मादर हसनैन यहां है या मादर हसनैन वहां है। यह लिखा जन्नतुल बकी की जो रिवायत है बीबी जहरा की लहद की उनकी की, वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम से है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम, बस मेरे आखिरी जुमले, जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन से वसीयत की कि भैया मुझे नाना के पहलू में दफन करना, और अगर नाना के पहलू में मुझे दफन होने दुनिया वाले ना दे, यू नो वेरी वेल कि किसने स्टॉप किया था इमाम हसन को वहां दफन करने के लिए, किसने तीन बरसाए थे रसूलुल्लाह इमाम हसन को दफन होने के लिए, उसके बाद भी उनके साथ सॉफ्ट कॉर्नर है लोगों को। अफसोस से बोल रहा कि वो सॉफ्ट कॉर्नर को खत्म करो, ये डिप्लोमेसी नहीं। आज क्वेश्चन आंसर में आया कि डिप्लोमेसी इस्लाम में है, नो नो, इस्लाम में कोई डिप्लोमेसी नहीं है, कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखने की जरूरत नहीं है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कि उसके जनाजे पे जो तीर चलाया गया, किसने चलाया, मैं नहीं बोल रहा, नाम नहीं बोलूंगा, आप जाके चेक कर लो, तो इमाम हसन ने कहा था कि अगर मुझे नाना के बाजू जो मेरी राइट है, हसन से ज्यादा किसकी राइट है रसूल के बाजू दफन होने की, कर जो मेरी राइट है, अगर मुझे दफन होने ना दे तो मुझे मां के पहलू में दफन करना। ये रिवायत से उलमा ने कहा कि बीबी जन्नतुल बकी में, यू अंडरस्टैंड नाउ, इज इट क्लियर। इमाम हसन ने कहा था कि अगर नाना के पहलू में मुझे मौका ना मिले, दुनिया दफन होने ना दे, तो मुझे मां के पहलू में दफन करना। यह तो कंफर्म है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम जन्नतुल बकी में, इसमें कोई कोई रिवायत ऐसी नहीं है कि इमाम हसन वहां पे नहीं है। वो सब उलमा ने वही लिखा कि हसन इब्ने अली है, लेकिन बीबी के बारे में इमाम हसन से रिवायत है, इसलिए उलमा ने बीबी को जन्नतुल बकी का सलवात पढ़ लिया। बस दोस्तों, बस दोस्तों, मौला आबाद रखे।
लबैक या हुसैन,
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 बस बस
बस दोस्तों, मौला आबाद रखे, मौला खुश रखे। इतना बड़ा मजमा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बीबी तुमको आबाद रखे। बाकी बातें कल, कल इंशाल्लाह कल की मजलिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो हर मजलिस इंपॉर्टेंट होती जाएगी, अब वो कल से तो सब मेहंदी भी उठेगी कल बहुत, और लेकिन कोशिश करो कि 9:15 पे मैं बैठ जाऊं। कल से तो सिर्फ चार रातें, कल इंशाल्लाह मौला के रोज़े की पूरी डिटेल, नजफ अशरफ की डिटेल बताऊँगा इंशाल्लाह। आज जितना भी मैंने बताया वो सिर्फ इसलिए था, तेज चला गया, मैं नहीं समझ रहा था कि इतना टाइम निकलेगा। आज 5 दिन हो गए, अभी मक्के मदीने में ही इतने आपके पास मतलब वाक़यात है, इतनी इम्पोर्टेंस है। अल्लाह हमको मक्का मदीने की ज़्यारत नसीब करे और मासूमीन की ज़्यारत जल्द से जल्द नसीब हो इंशाअल्लाह। दोस्तों, वो हुसैन जो मदीने से चला था, करबला भी आ गया, अब आज कि ये रात और कल की एक रात बाकी है। बस कल का एक दिन है, कल की रात है। परसों की सुबह हुसैन के खेमों से बच्चों की अलतश की आवाज़ आएगी। शबे 6 मुहर्रम आ गई, कितनी जल्दी गुजर गए दिन, 6 मुहर्रम की रात आ गई। कितना इंतज़ार था इस मुहर्रम का कि हुसैन आए, हुसैन आए, हर घर में आ गए मौला। कितनी रौनक है रिजवी कॉलेज में, सोच भी नहीं सकते। लेकिन सब उजड़ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, आशूरे के बाद सन्नाटा हो जाएगा। दोस्तों, जब हम ये फील करते, हर माँ ने अपने बेटे को भेज के ये फील किया। आज पूरी दुनिया में आज की रात एक शहीद का जिक्र होता है, उस शहीद का जिक्र होता है कि जिसकी आवाज़ पे हुसैन ठोकरें खा रहा था। आहिस्ता नहीं रोना, आहिस्ता नहीं रोना। एक शहीद ऐसा है کہ جس کی آواز پہ مولا حسین سیدھا نہیں گئے، کبھی اٹھتے تھے کبھی بیٹھ جاتے تھے، آپ سمجھ گئے کہ وہ کون سا شہید. حسین کا وہ جوان بیٹا جس کے بعد حسین ضعیف ہو گیا، جس کی شہادت کے بعد حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا. دوستو، شب عاشور حسین نے جب لیلہ کے خیمے میں علی اکبر کو دیکھا کہ لیلہ زلفوں کو سوار رہی ہے اور کہہ رہی ہے میرے لال، کتنے ارمان تھے شادی کے بیٹا، کتنی خواہش تھی کہ سہرا باندھے تم دولہا بنو، لیکن ہائے وہ دن آ گیا کہ کل یہ چہرہ خون و خاک میں مل جائے گا. علی اکبر کا ماتم، علی اکبر کا ماتم. عزیزو، جب عاشورے کی صبح آئی، بی بی زینب نے کہا ماں جائے آج اذان علی اکبر سے دلواؤ. حسین نے کہا علی اکبر آج تمہاری پھوبھی کی خواہش ہے. شہزادے نے اللہ اکبر کہا، ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ رسول اللہ کی آواز ہے جو گونج رہی. کائنات کے ذرے ذرے نے گواہی دی، بے شک کبریائی اللہ کے لیے. وقت گزرا، ایک ایک شہید ہوا. مولا کی مظلومیت یہ تھی دوستو کہ عاشورے کے دن حسین جب بھی میدان میں جاتے تھے تو اکیلے نہیں جاتے تھے، ہمیشہ علی اکبر اور عباس حسین کو سنبھال کے لے کے جاتے کہ کوئی امام پہ وار نہ کرے، کوئی ظلم نہ ہو، کوئی تیر نہ آئے، ساتھ ساتھ رہتے تھے. قاسم کا پامال لاشا اٹھایا، حسین کے ساتھ عباس اور علی اکبر ہیں. اون و محمد کی باڈیز کو اٹھایا، علی اکبر اور عباس ہیں. جب عباس شہید ہوئے، عباس کی آواز پہ حسین پہنچے، تو علی اکبر اپنے بابا کو، ضعیف بابا کو ساتھ لے کر گیا. لیکن جب اصل ضرورت تھی حسین کو، تڑپ کے رو، جب ریال ضرورت تھی حسین کو کہ کوئی سہارا دے، اس وقت حسین کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا. اس سے پہلے کیا ہوا، لیلہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حسین میدان میں دیکھ رہے، میں خیمے کے اندر سے حسین کے چہرے کو دیکھ رہی تھی کہ اگر میرے بیٹے پہ کوئی مصیبت آئے گی تو باپ کا دل ہے، چہرے کا رنگ ضرور بدلے گا. لیلہ کہتی ہیں کہ کچھ دیر کے بعد چہرے کا رنگ بدلا، میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ مولا میرے بچے کی خیریت تو ہے. حسین نے کہا لیلہ تیرا بیٹا بھوکا اور پیاسا ہے، میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. لیلہ آج تم دعا کرو کہ علی اکبر کو اس ظالم پہ کامیابی ہو. کربلا کی عجیب دعا ہے. بی بی آئی خیمے میں، زمین پہ بیٹھ گئی، دوسری بیویوں کو جمع کیا، جمع کر کے بالوں کو پریشان کر کے کہا کہ اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، ایک دفعہ میرے یوسف کو مجھ سے ملا دے. ماں کی دعا قبول ہوئی، علی اکبر واپس آئے اور واپس آ کے کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے بابا. یہ جملہ قیامت کا جملہ تھا. حسین نے کہا علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے دو. شہزادے نے زبان دی، فوراً پیچھے ہٹ گئے، کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. اسی طرح برسا دو. حسین نے کہا علی اکبر جاؤ، تمہارے دادا تمہیں سیراب کریں گے. شہزادہ ماں سے مل کے خیمے سے باہر آیا. جیسے ہی علی اکبر جانے لگے، اب حسین کا جملہ سنو، حسین نے پلٹ کر ماں سے کہا کہ لیلہ اب علی اکبر کے لیے دعا نہیں کرنا. عزیزو، ذرا کوئی لیلہ کے دل سے پوچھے. علی اکبر میدان میں آئے، لیلہ کہتی ہے کہ میں حسین کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ حسین کا چہرہ ریڈ ہونا شروع ہوا، سرخ ہونا شروع ہوا، اتنا ریڈ ہوا کہ سرخی نمایاں ہو گئی. میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میرے بچے پہ کیا گزری، تو اس وقت حسین کا جملہ کہ لیلہ شکر کرو قربانی قبول ہو گئی. اب تبھی علی اکبر کی آواز آئی، عزیزو اب جو حسین میدان میں چلے، کبھی اٹھتے تھے کبھی زمین پہ بیٹھ جاتے تھے، کبھی سر کو پیٹ کے کہتے ارے علی اکبر میں کدھر آؤں بیٹا، میری آنکھوں کا نور چلا گیا بیٹا، مجھے نظر نہیں آ رہا، ایک دفعہ پھر پکارو۔ جب علی اکبر تک پہنچے تو خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے، جوان بیٹا ایڑیا لگڑ رہا تھا، حسین نے اپنے آپ کو گھرایا، رخسارے پہ رخسارا رکھ دیا، کہا علی اکبر۔ اسی طرح پرسا دو، اسی طرح پرسا دو، آج لیلہ تم کو دعا دے، لیلہ تم کو دعا دے۔ لیلہ نے اپنے حسین نے اپنے رخسارے کو علی اکبر کے رخسارے پہ رکھ دیا، کہا میرے بیٹے جواب دو، ولدی حسین آیا، جواب نہیں آیا۔ پھر حسین نے علی اکبر کے شانے کو ہلایا، کہا بیٹا جواب دو، بابا آیا بیٹا۔ علی اکبر کے دونوں ہاتھ سینے پہ ہیں، پیروں کو زمین پہ لگڑ رہے، اتنی تکلیف ہے۔ حسین دو دفعہ پکارے، اب تک پکار رہا تھا، اب حسین کی غربت معراج پہ چلی گئی، علی اکبر کے پہلو میں لیٹ گئے، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ پروردگار تو گواہ رہنا، یہ میرا بازو برابر کا بیٹا ہے۔ حسین اٹھے، علی اکبر کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا، شہزادے نے دونوں ہاتھ ایسے رکھے، تکلیف ہے، آنکھیں بند ہے۔ حسین نے ہاتھوں کو ہٹانا چاہا، علی اکبر نے پھر رکھ لیا، کیوں بیٹا جانتا ہے میرا بابا بالکل اکیلا، میرا بابا میرے سینے کا زخم نہیں دیکھ سکتا۔ حسین نے ہٹانے کی کوشش کی، پھر علی اکبر نے رکھ لیا، تیسری مرتبہ حسین نے زور دے کر ہٹایا، اب جب ہٹایا تو سینے کا زخم نظر آیا، حسین کا کلیجہ پھٹ گیا، نجف کا رخ کیا، آستین کو الٹی، یا علی کہہ کے بچی کو نکال دیا۔ اب تک آپ نے حسین کی مصیبت سنی، میں دو منٹ میں مجلس ختم کر رہا، اب تک مولا حسین کی مصیبت سنی نا، اب اس ماں کی مصیبت سن لو جس نے 18 سال علی اکبر کو پالا ہے۔ جب دو منٹ میں، 11 محرم کو جب یہ قافلہ چل رہا تھا تو لیلہ نے جلتی ہوئی ریت پہ علی اکبر کے لاشے کو دیکھا تھا، تو لیلہ نے اونٹ کی بلندی سے لاشے کو دیکھ کر ایک جملہ کہا کہ میرے لال آج کے بعد تیری ماں کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی بیٹا۔ دو منٹ میں ختم کرا، تڑپ کے روز لیلہ نے کہا کہ آج کے بعد لیلہ کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی بیٹا، تیرا لاشا دھوپ میں پڑا ہوا ہے، ماں سائے میں نہیں بیٹھے گی۔ بس دوستو یہ قافلہ چلا، ایک ایسی بستی سے گزرا کہ جہاں غیر مذہب کی کچھ عورتیں کھڑی ہوئی تھی، ان عورتوں نے دیکھا کہ نیزوں پہ سر ہے، اون پہ بیبیاں ہیں، انہوں نے حسین کے سر کو دیکھا، خاصمہ انہوں محمد کے سر کو دیکھا، علی اصغر کے سر کو دیکھا، ان سروں کے درمیان ان عورتوں کی نگاہ جب علی اکبر کے سر پہ پڑی تو ایک عورت اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے اس نیزے کے نیچے آئی، غور سے دیکھنے لگی، دیکھ کے اپنے ساتھیوں کو بلایا، بلا کے کہا میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ اس نے علی اکبر کے سر کے نیچے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ پروردگار جب یہ جوان مرا ہو، خدا کرے اس کی ماں دنیا میں زندہ نہ ہو۔ یہ آواز لیلہ کے کانوں میں آئی، لیلہ نے کہا تو بد دعا کیوں کر رہی، کہا بد دعا نہیں کر رہی، یہ کہہ رہے جب ہم نہیں دیکھ سکتے تو ماں نے کیسے دیکھا۔ اس وقت لیلہ نے کہا میرا 18 برس کا لال تھا، شادی کے ارمان تھے، میرے علی اکبر کا